ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। संविधान को अंगीकार किए जाने की आज 75वीं वर्षगांठ है। सरकार ने इस अवसर पर आज से एक वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। ये समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का उल्लेख एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में किया है। इसके माध्यम से देश ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल किया है। संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह महत्वपूर्ण दिन देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष के ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान देश की हजारों वर्षों की परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 16वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों की शहादत को सम्मान देने के लिए पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुलिस की एक टुकड़ी ने सलामी शस्त्र दिया और बिगुलर्स लास्ट पोस्ट बजाया। सभी गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों और शहीदों के परिजनों ने शहीदों को सलामी दी। केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1,115 करोड़ से अधिक रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने इस कोष को मंजूरी दी है। समिति ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 378 करोड़ रुपए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपए, कर्नाटक और केरल के लिए 72 करोड़ रुपए और तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उच्च स्तरीय समिति ने 115 करोड़ से अधिक रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा के प्रशिक्षण तथा क्षमता वर्धन के लिए एक अन्य परियोजना की भी मंजूरी दी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आर्टिकल 370 फिल्म के निर्देशक आदित्य सुहास जांभले ने कहा कि इस महोत्सव में उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीतने के बारे में भी आशा व्यक्त की। डॉक्यूमेंट्री पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस द एपिक स्टोरी ऑफ दिल्ली मेट्रो को भी भारतीय पैनोरमा की गैर फीचर फिल्म श्रेणी में प्रदर्शित किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के संचार के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने आकाशवाणी से कहा कि डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य कहानी के माध्यम से जटिल इंजीनियरिंग अवधारणाओं को सरलता से समझाना है। महोत्सव के मास्टर क्लास सत्र में आज सोनू निगम, शाहिद रफी, सुभाष घई और अनुराधा पोडवाल हिस्सा लेंगी। तमिलनाडु मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और समीपवर्ती पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर पर बना दबाव अगले 12 घंटों के दौरान गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके दो दिन में श्रीलंका तमिलनाडु के तटों की ओर बढ़ने की आशंका है। दबाव के कारण 29 नवंबर तक तेज से बहुत तेज वर्षा की आशंका है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बहुत अधिक वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से तेज वर्षा हो सकती है। मछुआरों को इन क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। चेन्नई और उसके आसपास हल्की से मध्यम बारिश हुई। नागापट्टनम और कडलोर में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 प्रतियोगिता की शुरुआत आज से हो रही है। भारत का सामना कल थाईलैंड से होगा। भारत ने रिकॉर्ड 4 बार ये टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इस बार टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।